ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने जेलों में बंद कैदियों की अस्वाभाविक मौत होने पर उनके परिजनों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र से आम आदमी पार्टी विधायक राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्रालय ने दिल्ली के स्कूलों के लिए 56वीं युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया। राजधानी के सी लाल चौक ओखला औद्योगिक क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के कारण दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में कल सुबह जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। और नई दिल्ली से फ्रांस में आयोजित होने वाली विश्व कौशल प्रतियोगिता के लिए भारतीय प्रतियोगियों का दल आज देर रात रवाना होगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली सरकार ने जेलों में बंद कैदियों की अस्वाभाविक मौत होने पर उनके परिजनों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की आज घोषणा की है। गृह मंत्री कार्यालय ने बताया कि जेल में कैदियों के बीच झगड़े या जेल कर्मचारियों द्वारा यातना और लापरवाही के कारण अप्राकृतिक मौत के मामलों में ये मुआवजा दिया जाएगा। इस सिलसिले में संबंधित जेल अधीक्षक को राजधानी के जेल महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के सामने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को उनकी मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव भेज दिया है। इस अवसर पर गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि पहल जेल प्रणाली के भीतर न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि जेल में अस्वाभाविक परिस्थितियों में मृत्यु होने पर कैदियों के परिवारों को मुआवजा प्रदान करना मानवाधिकारों के स्तंभों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आम आदमी पार्टी ने ओखला विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायकों ने भाजपा के खिलाफ तख्तियां लेकर नारेबाजी की। दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के दिल्ली प्रमुख देवेंद्र यादव की मौजूदगी में श्री गौतम ने पार्टी की सदस्यता ली।
संवाददाताओं से बातचीत में श्री गौतम ने कहा कि वे सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना, हिस्सेदारी और भागीदारी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के रवैये से नाखुश थे, जिसके कारण उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस बीच भाजपा ने श्री गौतम के कांग्रेस में शामिल होने पर कटाक्ष किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी विधायक को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारे पर कांग्रेस में शामिल करवाया गया है। उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष पर अपने विवादित टिप्पणियों के कारण श्री केजरीवाल के करीबी राजेंद्र पाल गौतम का राजनीतिक भविष्य खतरे में था, इसलिए उन्हें कांग्रेस में भेजा गया है। श्री सचदेवा ने कहा कि इस निर्णय से कांग्रेस ने यह साबित कर दिया कि वे एक धर्म विशेष के खिलाफ है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान बजरंग पूनिया और विनीत फोगाट आज कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और दीपक बावरिया की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। इस अवसर पर सुश्री फोगाट ने कहा कि वे कांग्रेस में इसलिए शामिल हुई हैं क्योंकि पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी है और उनके संघर्ष के दौरान उनका समर्थन किया था।
कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। मैं विश्वास दिलाती हूं पूरे देशवासियों को, जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं।
इस दौरान बजरंग पूनिया ने सभी का धन्यवाद किया।
आज हम कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमने किसान आंदोलन में मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने आज दिल्ली के स्कूलों के लिए 56वीं युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह संसद भवन के जीएमसी बालयोगी सभागार में आयोजित किया। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने पीतमपुरा स्थित एमएम पब्लिक स्कूल को प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। पर्यटन मंत्रालय ने देश की जनता के भाव को समझने के लिए पहली बार राष्ट्रव्यापी बौद्धिक संपदा देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 पहल की शुरुआत की है। इसके तहत लोगों से उनके पसंदीदा पर्यटन स्थल के बारे में मतदान के जरिए जानकारी ली जाएगी। इस पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च को श्रीनगर में की थी और इसके लिए मतदान की अंतिम तिथि 15 सितंबर है।
देखो अपना देश पीपल्स चॉइस पहल का उद्देश्य नागरिकों के साथ जुड़कर देश के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों की पहचान करना है। इसके लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा विरासत, प्रकृति तथा वन्य जीवन, साहसिक और अन्य जैसी 5 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसके अंतर्गत लोग मतदान कर सकेंगे। 4 मुख्य पर्यटन श्रेणियों के अलावा अन्य श्रेणी में लोग अपने व्यक्तिगत पसंदीदा स्थल के लिए मतदान कर सकते हैं। इन श्रेणियों से यह पहल सुंदर सीमावर्ती गांव, वेलनेस टूरिज्म, विवाह पर्यटन जैसे कम चर्चित पर्यटन स्थलों को लोगों के बीच प्रचलित करने में मदद मिलेगी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस पहल के लिए एक खास पोर्टल तैयार किया गया है, जहां लोग अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से पसंदीदा श्रेणी में मतदान कर सकेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राजधानी के सी लाल चौक ओखला औद्योगिक क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के कारण दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में कल सुबह पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
जल बोर्ड ने सूचित किया है कि इस कार्य के लिए ओखला जल संशोधन संयंत्र को बंद कर दिया जाएगा। इसके कारण 11 सितंबर की शाम से 12 सितंबर की सुबह तक ओखला स्टाफ क्वार्टर, होली फैमिली हॉस्पिटल, गांधी कैंप, गिरिनगर वाटर इमरजेंसी, सी लाल चौक चरण 2 जलाशय पंपिंग क्षेत्र और ओखला WTP के स्थानीय कमांड क्षेत्रों में जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं होगी। जल बोर्ड ने इन क्षेत्रों के निवासियों को सलाह दी है कि आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करें और जरूरत पड़ने पर नजदीकी जल बोर्ड केंद्रों से संपर्क कर अपनी पानी के टैंकर मंगा सकते हैं। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली में लोक निर्माण विभाग द्वारा ओल्ड बारापुला ब्रिज के पास झुग्गियों को तोड़ने की नोटिस की भाजपा ने आज निंदा करते हुए लोक निर्माण मंत्री आतिशी से इस पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली भाजपा के महामंत्री विष्णु मित्तल ने कहा कि दिल्ली सरकार के शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ड्यूसिप का मूल काम झुग्गी क्लस्टरों का पुनर्वास करना है, परंतु वे इस कार्य में विफल रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 5 सालों में ड्यूसिप ने कहीं भी न तो झुग्गी क्लस्टरों के पुनर्वास का काम किया है, न ही क्लस्टरों के रखरखाव के काम पर ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त श्री मित्तल ने बताया कि झुग्गी वासियों की परेशानियों को रेखांकित करने के लिए दिल्ली भाजपा रविवार को शहर के 300 से अधिक झुग्गी क्लस्टरों में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में विशेष सदस्यता अभियान चलाएगी। दिल्ली के बुराड़ी स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA मैदान पर कल से शुरू होने वाले गणपति पूजा महोत्सव को लेकर दिल्ली पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहने की संभावना व्यक्त की है। एक यातायात निर्देशिका में पुलिस के यातायात विभाग ने बताया कि मुकुंदपुर चौक से आजादपुर चौक, बुराड़ी चौक से मुकुंदपुर चौक और शांति स्वरूप त्यागी मार्ग से भाई परमानंद मार्ग पर किसी भी वाहन को रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यातायात विभाग ने यात्रियों से इन मार्गों से बचने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यात्रियों से बाईपास रोड और सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करने के लिए अनुरोध किया है। अधिक जानकारी दिल्ली यातायात पुलिस की आधिकारिक सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। फ्रांस में आयोजित होने वाली विश्व कौशल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रतिभागियों का दल आज देर रात नई दिल्ली से फ्रांस के लिए रवाना होगा। प्रतियोगिता का आयोजन 10 से 15 सितंबर के बीच फ्रांस के लियोन में होगा। पेश है हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट।
भारतीय दल में देश भर के 60 प्रतिभागी शामिल हैं जो 61 प्रतिस्पर्धाओं में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रतियोगिता में 70 से अधिक देशों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान भारतीय दल के साथ केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय दल में शामिल ओडिशा की सस्मिता ने बताया कि उनका चयन बैकरी प्रतिस्पर्धा में हुआ है और वह इस प्रतियोगिता में अपना कौशल दिखाने और पदक जीतने के लिए काफी उत्साहित हैं।
मेरा नाम सस्मिता है, मैं ओडिशा से हूँ। मैं बैकर्स के लिए पार्टिसिपेट कर रही हूँ, अपने देश के लिए उधर कॉम्पीट करूंगी और गोल्ड लाऊंगी।
वही कारपेंट्री प्रतिस्पर्धा के लिए चयनित मध्य प्रदेश के राहुल विश्वकर्मा ने अपने चयन पर खुशी जाहिर की है और मंत्रालय का धन्यवाद व्यक्त किया है।
मेरा नाम राहुल विश्वकर्मा है, मेरा वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन के लिए चयन हुआ है। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और NSDC का।
भारतीय दल की रवानगी से पहले एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह और अमन सहरावत तथा फिल्म अभिनेता स्वरमन जोशी ने भी भारतीय दल को प्रोत्साहित करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी थी। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। उन्होंने इन शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव के बारे में चर्चा की। श्री मोदी ने सुझाव दिया कि शिक्षक विभिन्न भाषाओं में विद्यार्थियों को स्थानीय लोक कथाएं सुनाएं, जिससे विद्यार्थी कई भाषाएं सीख सकें और भारत की जीवंत संस्कृति से भी परिचित हो सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को भारत की विविधता जानने के लिए शैक्षिक पर्यटन पर ले जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को सीखने में मदद मिलेगी और अपने देश के बारे में समग्र रूप से जानने में भी सहायता मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने शिक्षकों को अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का भी सुझाव दिया। सरकार ने आमदनी और योग्यता पर आधारित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए चुने हुए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए आवेदन करने की समय सीमा पर इस महीने की 30 तारीख तक बढ़ा दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ताकि कक्षा 8 के बाद स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल इस वर्ष 30 जून से खुला हुआ है, ताकि विद्यार्थी अपने आवेदन जमा कर सकें। योजना के अंतर्गत हर वर्ष 9वीं कक्षा के ऐसे 1,00,000 नए विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित क्वालिफाइंग परीक्षा उत्तीर्ण की हो। योजना का लाभ राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थियों को 12,000 रूपये वार्षिक दिए जाते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि आयुर्वेद, यूनानी, योग और होम्योपैथी चिकित्सा के लिए नेशनल एग्जिट परीक्षा 2021-22 बैच और उसके आगे के बैचों के लिए अनिवार्य होगी। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री जाधव ने कहा कि इस मामले को लेकर छात्रों की चिंताओं की समीक्षा के लिए गठित समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है। राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने जेलों में बंद कैदियों की अस्वाभाविक मौत पर उनके परिजनों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र से आम आदमी पार्टी विधायक राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्रालय ने दिल्ली के स्कूलों के लिए 56वीं युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया। राजधानी के सी लाल चौक ओखला औद्योगिक क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के कारण दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में कल सुबह जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।